नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कोलकाता को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली तीन अमृत भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के विकास को गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने बालाघाट में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की भी आधारशिला रखी। इसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल है।
बालाघाट में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान नौका का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने जयराम बाटी से बोडो गोपीनाथपुर होते हुए मायनापुर तक नई रेल लाइन तथा मायनापुर और जयराम बाटी के बीच नई ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुवाहाटी में आयोजित बागू रुम्बा दोहो उत्सव उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कार्यक्रम में प्रदर्शित जीवंत बोडो संस्कृति का उल्लेख किया। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनना भारत का प्रमुख लक्ष्य है। वे नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित संयंत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री की उपस्थिति में पिनाका निर्देशित रॉकेट की पहली खेप रवाना की गई। श्री सिंह ने कहा कि संयंत्र में विकसित पिनाका मिसाइलों का निर्यात शुरू हो चुका है और कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। पार्टी के रिटर्निंग अधिकारी के लक्ष्मण की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच शाम 4 बजे से 5 बजे तक होगी और नाम वापस लेने की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक रहेगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवश्यक हुआ तो कल मतदान होगा और कल ही भाजपा के नए अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 9 वर्षों में 62 लाख परिवारों को घर उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के 2,09,421 स्वीकृत लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त का हस्तांतरण किया। उन्होंने अधिकारियों को नगर निकायों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया ताकि लाभार्थियों को सही समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि ये गिरोह लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाकर धोखाधड़ी करता था। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ रात में रुक गई है। शनिवार से ही बीजापुर जिले में मुठभेड़ जारी थी। घटनास्थल से 2 और शव बरामद किए गए। इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की कुल संख्या 6 हो गई है, जिनमें 4 महिला माओवादी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से कुल 6 राइफलें भी बरामद की हैं। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड में शुरू होगा। इसमें 3,000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। पुरुष क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने इंदौर में खेले गए एक दिवसीय श्रृंखला के 3रे मैच में भारत को 41 रनों से हरा दिया है। मौजूदा वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत ली, जबकि भारत ने पहला वनडे मैच जीता। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला 21 जनवरी से शुरू होगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।